सेवामय जीवन, ज्वालामुखी ऊर्जा। एक समय जब गुरु महाराज अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज के साथ प्रचार करने के उपरांत श्री जन्माष्टमी को उपलक्ष करके श्री धाम मायापुर आए, तब श्रील प्रभुपाद ने उन्हें देखने के साथ ही साथ कहा, बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गए, आप तुरंत ही मथुरा चले जाओ, ब्रजमंडल परिक्रमा निकट ही है, अतएव वहां जाकर पंडे के साथ कैंप लगाने के स्थानों का निर्णय, यात्रियों के रहने की व्यवस्था तथा जल आदि की व्यवस्था को देखकर सब ठीक कर लो। श्रील प्रभुपाद की इच्छा तथा आज्ञानुसार जब गुरु महाराज तत्काल मथुरा प्रस्थान करने हेतु प्रस्तुत हुए, तब श्रील प्रभुपाद ने एक भक्त को गुरु महाराज के लिए पूरी और सब्जी बनाने के लिए कहा, किंतु जब गुरु महाराज ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ, तब श्रील प्रभुपाद ने अपने ऊपर से बंद होने वाले लोटे में पानी भरवा कर उसमें मिश्री घुलवा कर उन्हें दिया तथा साथ में नींबू देते हुए कहा, मार्ग में नींबू पानी बनाकर पी लेना। जब गुरु महाराज वहाँ से मथुरा के लिए रवाना हो गए, तब श्रील प्रभुपाद ने एक ब्रह्मचारी से कहा, हयग्रीव ब्रह्मचारी, ज्वालामुखी ऊर्जा अर्थात वॉल्केनिक एनर्जी से संपन्न हैं, वे सर्वदा किसी भी सेवा को उत्साहपूर्वक करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं तथा प्रत्येक अवस्था में सफल होकर ही लौटते हैं। गुरु महाराज ने एक बार मुझे बताया, श्रील प्रभुपाद के प्रकट काल में उन्होंने मुझ पर कृपा करके मुझे सदैव सेवाओं में व्यस्त रखा। जब मैं अथक परिश्रम कर किसी सेवा कार्य को संपूर्ण करके श्रील प्रभुपाद के निकट लौटकर आता, तो वे साथ ही साथ मुझे कोई अन्य सेवा कार्य दे देते। उन्हें मुझसे पहले वाले कार्य के विषय में पूछना नहीं पड़ता था, कारण वे भली भांति जानते थे कि मैं कार्य के संपूर्ण होने से पूर्व उनके पास नहीं आऊँगा। शारीरिक रूप से क्लांत होने पर भी उनके आदेश का पालन करने से मुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती। कभी कभी मैं सोचता था कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब मैं निर्धारित दैनिक समय सारणी के अनुसार जीवन यापन करूंगा, जिससे कि मैं शांति से संख्यापूर्वक हरिनाम, उपयुक्त समय पर गायत्री मंत्र जप और ध्यानपूर्वक वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन कर पाऊंगा, जैसे कि मेरे कुछ गुरु भ्राता करते हैं। श्रील प्रभुपाद के अप्रकट होने के पश्चात मुझे अपनी उपरोक्त इच्छा अनुरूप जीवन यापन करने के लिए प्रचुर समय मिला, किंतु अब मुझे बहुत अधिक शोक का अनुभव होता है कि जिस प्रकार से मैं उनके साथ रहते हुए सेवा में व्यस्त था, अब मैं उस प्रकार से व्यस्त नहीं हूँ। बाह्य रूप से उनके जगत से अप्रकट होने के पश्चात ही मुझे ये बात समझ में आ गई कि कठिन परिश्रम युक्त सेवा ही मेरा जीवन है। इस बात को अनुभव करने के पश्चात मैं स्वयं को उसी प्रकार से व्यस्त रखने का प्रयास करने लगा जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद मुझे रखते थे। ये सब श्रवण करने के पश्चात मुझे समझ में आया कि श्रील प्रभुपाद के द्वारा गुरु महाराज को ज्वालामुखी ऊर्जा कहकर संबोधन करना कितना उचित था। गुरु वैष्णव द्वारा प्रदत्त वस्तुओं की महत्ता को समझना। एक बार गुरु महाराज श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज के साथ पटना बिहार में प्रदर्शनी के उपलक्ष्य में सेवा कार्य में व्यस्त थे। वहाँ पर अत्यधिक शीत होने के कारण श्री वन गोस्वामी महाराज का हाथ इतना अधिक शुष्क हो गया कि दरारें पड़ने से उसमें से रक्त प्रवाहित होने लगा। गुरु महाराज भी ठंड से कांपते रहे। उन दोनों की ऐसी अवस्था देखकर श्रील प्रभुपाद के एक समृद्ध ग्रस्त आश्रित श्री सखी चरण बाबू, जिन्होंने श्री योगपीठ मंदिर के निर्माण कार्य का समस्त खर्च वहन किया था, उनके लिए स्वेटर लेकर आए। जब उन्होंने उन्हें स्वेटर देने का प्रयास किया, तब दोनों में से किसी ने भी स्वेटर स्वीकार नहीं किया। कुछ दिनों के पश्चात जब श्रील प्रभुपाद वहाँ पहुँचे, तब श्री सखी चरण बाबू ने उनके समक्ष स्वेटर के विषय को लेकर दुख व्यक्त किया। श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा, आप वे स्वेटर मुझे लाकर दो। जब श्रील प्रभुपाद ने गुरु महाराज तथा श्रील वन गोस्वामी महाराज को बुलाकर उन्हें वे स्वेटर दिए, तब उन्होंने स्वेटरों को ग्रहण कर लिया। श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज ने उस स्वेटर का क्या किया मुझे नहीं पता, किंतु क्योंकि गुरु महाराज कभी भी स्वेटर पहनते ही नहीं थे, इसी कारण उन्होंने उस स्वेटर को भी पहना तो नहीं, किंतु उसे 12 महीने अपने बिस्तर पर लपेट करके अवश्य रखते थे। एक दिन उनसे किसी सेवक ने उनसे कहा, आप जब इस स्वेटर को कभी भी पहनते ही नहीं हैं, तब फिर इसे सब समय अपने बिस्तर पर रखने की क्या आवश्यकता है? गुरु महाराज ने उत्तर दिया, साधु का संबल होता है लोटा और कंबल, इसलिए मैं अधिक सर्दी लगने पर कंबल ओढ़ता हूँ, मैं स्वेटर नहीं पहनता। किंतु श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी गई वस्तु के गुरुत्व को समझकर मैं सदैव इसे अपने निकट रखता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं जब कभी इस जगह से जाऊँ, इसी स्वेटर के ऊपर सिर रखे हुए ही जाऊँ। सेवक ने पूछा, श्री सखीचरण बाबू ने स्वेटर नहीं लेने तथा बाद में श्रील प्रभुपाद के हाथ से उस स्वेटर को स्वीकार करने के पीछे का क्या रहस्य था? गुरु महाराज ने उत्तर दिया, यदि मैं श्री सखीचरण बाबू से उस स्वेटर को स्वीकार करता तो मन में उन्हीं के प्रति कृतज्ञता का बोध होता, किंतु श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए जाने पर कृतज्ञता भी उन्हीं के प्रति ही हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रदत्त वस्तु निर्गुण है, उनके द्वारा प्रदत्त वस्तु से पुनः पुनः उनकी स्मृति होने से मंगल है। इसी विचार से हम प्रभुपाद के द्वारा प्रदत्त समस्त वस्तुओं को स्वीकार करते थे तथा अन्यों के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को अपने लिए कभी स्वीकार नहीं करते थे। गुरु सेवा का उत्तरदायित्व केवल तुम्हारा। श्रील प्रभुपाद के अनुगत में 1936 में असम के सार्वभौम नामक स्थान पर श्री गौड़िया मठ के विग्रहों की स्थापना हुई। उस समय उस स्थान का दायित्व श्रील प्रभुपाद के आश्रित श्री भक्ति विज्ञान आश्रम गोस्वामी महाराज पर था। श्रील प्रभुपाद के सार्वभौम जाने से 2 दिन पूर्व गुरु महाराज अपने गुरु भ्राता श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज के साथ विग्रह प्रतिष्ठा और उत्सव से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं को देखने के लिए पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कारण वहाँ पर विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव हेतु अथवा श्री प्रभुपाद के आगमन के उपलक्ष्य में किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं हुई थी। गुरु महाराज ने जब श्री भक्ति विज्ञान आश्रम गोस्वामी महाराज से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, श्री प्रभुपाद ने इसका संपूर्ण दायित्व श्री निमानंद प्रभु को दिया था, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया। गुरु महाराज ने उनकी बात सुनकर श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज से परामर्श किया तथा अपने उपस्थित गुरु भ्रातों के साथ मिलकर अत्यधिक उत्साहपूर्वक समस्त व्यवस्थाएं करने में व्यस्त हो गई। निर्धारित समय पर श्रील प्रभुपाद अपने परिकरों सहित वहां पर उपस्थित हुए तथा सार्वभौम में अत्यंत सुंदर सुव्यवस्थित महोत्सव सम्पन्न हुआ। महोत्सव के पश्चात श्रील भक्ति विज्ञान आश्रम गोस्वामी महाराज ने गुरु महाराज से पुनः पुनः अनुरोध किया, आप श्रील प्रभुपाद को श्री निमानंद प्रभु के द्वारा दायित्व नहीं निभाने के विषय में सब कुछ बताइए। कारण श्रील प्रभुपाद इस बात को जानने के पश्चात ही श्री निमानंद प्रभु को दायित्व के पूर्ण अपूर्ण के गुण दोषों के विषय में बतलाकर भविष्य के लिए सचेत करेंगे। गुरु महाराज अपने गुरु भ्राता के अनुरोध की उपेक्षा ना कर सके। जब श्रील प्रभुपाद भ्रमण कर रहे थे एवं गुरु महाराज हार से पंखा करते हुए उन पर बैठने वाली मक्खियों को उड़ा रहे थे, तब उन्होंने श्रील प्रभुपाद को श्री निमानंद प्रभु के विषय में बतलाया। श्रील प्रभुपाद ने गुरु महाराज से कहा, ए तो दुख पाओ केनो, अर्थात इतना चाहते क्यों हो तथा इसके कारण इतना दुख क्यों पाते हो? निमानंद प्रभु अथवा अन्य किसी से इतनी आशा क्यों करते हो तथा उस आशा के पूर्ण नहीं होने पर वृथा दुख भोग क्यों करते हो? च व तू अर्थात A to Z गुरु सेवा तुम्हारी है, उसमें यदि कोई तुम्हारी सहायता करेगा तो तुम्हें उसके लिए उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, किंतु यदि उसमें सहायता नहीं करने वाले के प्रति तुम शुभ्ध होगे तो वह तुम्हारी ही भूल होगी। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की प्रधान परिचारिका अर्थात मेजर डोमो हैं। वे श्री कृष्ण की समस्त सेवाओं को अपने द्वारा कृत सेवा के रूप में मानती हैं। यदि कोई सखी उस सेवा में उनकी कोई सामान्य सी भी सहायता करती है, अर्थात जल लाकर देती है अथवा मसाला इत्यादि पीस देती है, तो वे उनकी कृतज्ञ हो जाती हैं। किंतु किसी ने यह सेवा नहीं की है, उसके लिए वे मन में भी किसी के प्रति कोई अभियोग अर्थात शिकायत इत्यादि नहीं करती। गुरु महाराज के प्रति दिया गया श्रील प्रभुपाद का उपरोक्त उपदेश वास्तव में अपने परम मंगल की कामना करने वाले समस्त निष्कपट साधकों के लिए अत्यंत उपादेय है। गुरु महाराज बहुत बार इस घटना का वर्णन करते हुए भाव विभोर हो उठते थे। अन्यों के विश्वास और निष्ठा के पात्र। सार भोग में जब श्रील प्रभुपाद वहां पर प्रतिष्ठित गौड़ीय मठ के विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए उपस्थित हुए, तब उन्होंने विग्रह प्रतिष्ठा का संपूर्ण दायित्व श्रीमद भक्ति रक्षा श्रीधर गोस्वामी महाराज को दिया था। श्रील भक्ति रक्षा श्रीधर गोस्वामी महाराज ने वैष्णव रीति के अनुसार विग्रहों का अभिषेक, उनका श्रृंगार, वस्त्र पहनाना, मुकुट प्रदान तथा माला चंदन आदि सब कुछ देकर विग्रहों को सुसज्जित कर दिया। जब श्रील प्रभुपाद गर्भगृह में गए, तब श्री विग्रहों को संपूर्ण रूप से सुसज्जित देखकर वे साथ ही साथ मंदिर से बाहर आ गए तथा उन्होंने कहा, मेरे लिए कोई सेवा नहीं बची है, अतएव मेरे भीतर रहने का क्या लाभ, श्री विग्रह तो प्रकाशित ही हैं। श्रील प्रभुपाद की बात सुनकर श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज खेद करने लगे, मैंने भूल से सब सेवाएं स्वयं ही कर दी। अंततः श्रील प्रभुपाद द्वारा विग्रहों को पुष्पमाला आदि पहनाने के लिए सुयोग क्यों नहीं रखा, आज मेरा अवश्य ही श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपराध हुआ है। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज ने कुछ दिनों के पश्चात अपने मन की बात गुरु महाराज को बतलाई तथा उनसे अनुरोध किया, आप पत्र के माध्यम से श्रील प्रभुपाद को मेरे मन की अवस्था तथा मेरे द्वारा अपराध हेतु क्षमा प्रार्थना कीजिए। गुरु महाराज ने प्रभुपाद को पत्र लिखा तथा श्रील प्रभुपाद ने उसके उत्तर में लिखा, शरणागत व्यक्ति का कभी भी अपराध नहीं होता। हाँ, कभी कोई भूल हो सकती है, किंतु शरण्य शरणागत की भूल को गुरुत्व नहीं देते, केवल उसका सुधार करते हैं। यदि श्री श्रीधर महाराज शरणागत हैं, तब तो उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि नहीं, तो फिर उन्हें यह अवश्य ही जानना चाहिए कि अशरणागत की प्रत्येक क्रिया ही अपराधमय होती है, भले ही वह भारी रूप से सेवा पूजा आदि भी दिखलाई क्यों ना देती हो। श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रदत्त उत्तर को पढ़कर गुरु महाराज तथा श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज स्वयं को क्रंदन करने से नहीं रोक पाए। उन्होंने श्रील प्रभुपाद के वचनों के यथार्थ भाव की परस्पर चर्चा करके कुछ धैर्य धारण किया। गुरु महाराज के प्रति उनके गुरु भ्राताओं का ऐसा विश्वास, ऐसी निष्ठा थी कि वे उन्हीं के माध्यम से श्रील प्रभुपाद के निकट अपने हृदय की बात पहुंचाते थे तथा उनके माध्यम से ही श्रील प्रभुपाद के गूढ़ वचनों के यथार्थ भाव को धारण करते थे। महापुरुषों की दूरदर्शिता। ये उस समय की बात है जब श्रील भक्ति कुमुद सन गोस्वामी महाराज, श्री राधा रमन ब्रह्मचारी एवं मेरे गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, श्री हय ग्रीव ब्रह्मचारी मद्रास कौड़िय मठ में रहते थे। यद्यपि उस समय वे दोनों ब्रह्मचारी थे, परंतु श्रील प्रभुपाद के एकनिष्ठ शिष्य होने के कारण उनकी मठ में अनुभवशाली वरिष्ठ गणों के रूप में मान्यता थी। वहां वास करते समय श्री राधारमन ब्रह्मचारी ने देखा कि एक ब्रह्मचारी अन्य मठवासियों से प्रायः अलग अलग रहता था, उनसे घुलता मिलता नहीं था, किसी से बातचीत भी बहुत ही कम करता था तथा यथासंभव एकांत में रहकर हरिनाम एवं ग्रंथ अध्ययन में अपना ध्यान केंद्रित करता था। उनकी इन गतिविधियों को देखकर श्री राधारमन ब्रह्मचारी को कुछ संशय हुआ एवं उन्होंने श्री हयग्रीव ब्रह्मचारी से अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, प्रभु, यद्यपि ये ब्रह्मचारी हरिनाम करने एवं ग्रंथ अध्ययन करने में अत्यधिक समय व्यतीत करता है तथा व्यर्थ वार्तालाप में भी लिप्त नहीं होता, परंतु मुझे संशय है कि कुछ गड़बड़ है। क्या आप कृपा इस विषय में कुछ अन्वेषण कर सकते हैं? श्री हयग्रीव ब्रह्मचारी श्री राधारमन ब्रह्मचारी की चिंता की सार्थकता को समझ गए तथा बाद में उस ब्रह्मचारी को अपने पास बुलाकर उससे बोले, मैंने सुना है कि तुम अन्य मठवासियों से अधिक वार्तालाप नहीं करते, उनके साथ हास परिहास अथवा एक संग प्रसाद ग्रहण करने का तो प्रश्न ही नहीं, इसका क्या कारण है? उस ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, मैं वृथा वार्तालाप में संलग्न नहीं होना चाहता, यही कारण है कि मुझे एकांत अति प्रिय है। श्री हयग्रीव ब्रह्मचारी ने कहा, मेरे विचार से यह अच्छा होगा यदि तुम उनके साथ कुछ समय व्यतीत करो एवं उनसे संबंध स्थापित करो। इस प्रकार अन्य मठवासियों की भांति एक सामान्य जीवन यापन करो। यदि कभी कभी उनके साथ हास परिहास अथवा ग्राम्य वार्ता भी करनी पड़े तो इसमें कोई हानि नहीं है, कारण कि भक्तों की प्रत्येक क्रिया से ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उनके वचनों को सुनकर वह ब्रह्मचारी अत्यंत विस्मय का अनुभव करते हुए बोला, प्रभु यद्यपि आप मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, परंतु आप मुझसे जैसा करने के लिए कह रहे हैं वह उसके सर्वदा विपरीत है जो मैंने अन्य वैष्णवों के मुख से श्रवण किया है। कृपा ये मत समझें कि मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, परंतु स्वयं श्रीमन महाप्रभु ने भी ग्राम में वार्ता कहने अथवा सुनने के लिए निषेध ही किया है, परंतु आप मुझे अन्य ब्रह्मचारियों के साथ आवश्यकता अनुसार कभी कभी ग्राम्य वार्ता में संलग्न होने का सुझाव दे रहे हैं, ये अत्यंत विस्मयपूर्ण है। श्री हयग्रीव ब्रह्मचारी ने तब उन्हें समझाते हुए कहा, ध्यानपूर्वक सुनो, अभी तुम इस मठ में मात्र शरीर से ही वास कर रहे हो, मन से नहीं। यदि तुम मेरे वचनानुसार आचरण नहीं करोगे तो कुछ समय पश्चात तुम्हारा शरीर भी यहाँ वास नहीं करेगा, तुम अवश्य ही अपने घर लौट जाओगे। परंतु यदि तुम मेरे सुझाव के अनुसार आचरण करोगे तो कम से कम तुम शरीर से तो मठ में वास करते ही रहोगे एवं क्रमशः तुम्हारा मन भी मठवास हेतु स्थिर हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखो एवं मेरे वचनों को पालन करने का प्रयास करो। यह दृष्टांत प्रदर्शित करता है कि यद्यपि श्री राधारमन ब्रह्मचारी अभी युवावस्था में ही थे तथापि अत्यंत दूरदर्शी थे तथा वर्तमान परिस्थितियों से परे सुदूरवर्ती भविष्य का दर्शन करने में पूर्णतया सक्षम थे। यद्यपि सामान्य व्यक्ति उचित एवं अनुचित व्यवहार की बाह्य अभिव्यक्ति को ही लक्षित करते हैं, परंतु दूरदर्शी व्यक्तियों की दृष्टि बाह्य व्यवहारिक क्रियाओं के परे भी दर्शन करती है। ऐसे व्यक्ति ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति की हृदयगत अवस्था क्या है एवं भविष्य में उसकी क्या स्थिति होने वाली है। मेरे गुरु महाराज एवं श्री राधारमन ब्रह्मचारी दोनों को ही ये अनुमान हो गया था कि इस ब्रह्मचारी का मन श्री हरि गुरु एवं वैष्णव की सेवा में स्थिर नहीं है, वह अपनी कठोर साधना से शीघ्र ही थक जाएगा एवं मठ से चला जाएगा। कुछ समय पश्चात उस ब्रह्मचारी के नाम का एक पत्र आया, परंतु उस ब्रह्मचारी ने प्रेषक को पत्र भेजने के लिए मठ की अपेक्षा निकटवर्ती एक ग्रस्त का पता दिया था। एक मठवासी के नाम का पत्र प्राप्त कर उस ग्रस्त ने श्री हयग्रीव ब्रह्मचारी को संवाद दिया एवं पत्र उनके हाथ में लाकर दिया। पत्र पढ़कर श्री हयग्रीव ब्रह्मचारी को ज्ञात हुआ कि कुछ समय पूर्व उस ब्रह्मचारी ने अपनी माता को एक पत्र लिखा था एवं कहा था कि वह शीघ्र ही घर लौट आएगा तथा माता उसके लिए एक नौकरी एवं विवाह हेतु कन्या देकर व्यवस्था कर ले। जो पत्र श्री हयग्रीव ब्रह्मचारी को प्राप्त हुआ वह उसकी माता का प्रतिउत्तर था, जिसमें उन्होंने यह दायित्व स्वीकार करते हुए उसे शीघ्र घर लौट आने के लिए आग्रह किया था। उस पत्र के आने के कुछ दिन पश्चात ही वह ब्रह्मचारी मठ से चला गया। यद्यपि मठवास के समय उसकी मानसिक व्याकुलता के कोई भी लक्षण बाह्यता दृश्य नहीं थे, श्री राधारमन ब्रह्मचारी एवं मेरे गुरु महाराज दोनों ने ही उसकी मन स्थिति को भली भांति जान लिया था। अपने कुछ समय के मठवास के कारण उस ब्रह्मचारी ने जो सुसंस्कार अर्जित किए उनके फलस्वरूप बाद में उसने वास्तविक सत्य को स्वीकार किया एवं लगभग 65 वर्ष की आयु में मठ में पुनरावर्तन किया तथा शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की दूरदर्शिता को स्मरण कर परवर्ती काल में उन्हीं से ही संन्यास ग्रहण किया।